الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور سے پڑھتے ہیں، اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے. یہ موضوع آج کل چل رہا ہے کتاب السلوک والاحسان میں سے. بہشتی زیور کا یہ ایک مضمون ہے، پیج نمبر 141 کے اوپر ہم ہیں. اور اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے، ان میں سب سے پہلا جو عنوان حضرت نے باندھا وہ ہے توبہ اور اس کا طریقہ. توبہ کرنا اور اس کا طریقہ، سب سے پہلے توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اچھائی کی ابتدا، نیکی کی ابتدا، یہ توبہ سے ہوتی ہے. توبہ اگر نہیں کی تو ابتدا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے درمیان پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نہ نیک بننا چاہتے ہیں اور نیکی کے کام شروع کر لیتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، توبہ کے بغیر، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم توبہ کے بغیر نیکی کا کام شروع کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، بس ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے وہ حج کر لیں گے، ہم عمرہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھ لیں گے، اور ہم صدقہ خیرات کر لیں گے، اور ہم اس طرح کے اعمال شروع کر دیں گے، یا عالمہ بن جائیں گے. آج کل یہ بھی پچھلے تقریباً 15-20 سال سے یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے نا دنیا دار طبقے کے اندر بہت زیادہ، کہ الحمدللہ اچھی بات بھی ہے، یعنی یہ اس کو ہم بالکل ہی برا نہیں سمجھ سکتے. وہ تو توبہ کے ساتھ ہوتا تو اصل فائدہ ہوتا، توبہ کے بغیر ہو رہا ہے تب نقصان ہے نا. لیکن یہ بھی ایک ہو گیا ہے کہ بھئی گناہوں کو تو نہیں چھوڑنا، گناہوں کی طرف تو بالکل ہی توجہ نہیں، بس یہ ہے کہ جی بس پڑھنا لکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ کتابیں پڑھ لو اور جو ہے وہ مدرسہ جوائن کر لو اور وہاں پہ جا کر کے عالمہ بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن گناہ چھوڑنا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو یہ کہتے تھے کہ اچھا تم جاؤ جا کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دو؟ نہیں. یا تم جاؤ جا کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آ جاؤ، تم جاؤ جا کر کے جو ہے نا وہ عمرے کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے؟ ہرگز 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 نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں کہتے تھے، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کیا. بلکہ کیا کرتے تھے؟ توبہ کرو. کس سے توبہ کرو؟ جس گناہ میں تم مبتلا ہو اس سے توبہ کرو. وہ لوگ کس گناہ میں مبتلا ہوتے تھے؟ وہ لوگ شرک کے گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، تو اس گناہ سے توبہ کرواتے تھے، اس کے بعد پھر اعمال بتاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے آج کے زمانے میں بھی، کہ گناہوں سے توبہ کروانا اور اس کے بعد پھر نیکی کے اعمال بتا دینا، یا نیکی کے اعمال جو ہے وہ شروع کروا دینا، علم حاصل کرنا بھی شروع کر دے انسان، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو پتا چلے کہ نیکی کے اعمال کیے کیسے جاتے ہیں. علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی معلوم ہو، آپ کو پتا چلے نا کہ نیکی کے اعمال کیا ہیں، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ گناہ کیا تھا، کیا کیا کون کون سے گناہ میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ان گناہوں سے مجھے توبہ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی تو علم ہے. علم علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک علم جو ہے نا وہ معلومات حاصل کرنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا کتنے کے پہاڑ کتنے اونچے ہوتے ہیں، اور بارش کیسے ہوتی ہے، यानी ये साइंस का इल्म, ये यानी ये वाला इल्म है, इसको हमने इल्म समझा हुआ है? नहीं, इल्म तो ये है कि भाई गुनाह क्या है, ठीक है। जैसे कि इंसान को इल्म हासिल हो कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, तो नमाज नहीं पढ़ना जो है ये तो गुनाह कबीरा था। क्या मुझे पता था ये बात पहले कि नमाज ना पढ़ना गुनाह कबीरा है? नहीं, इल्म हासिल किया तो पता चला कि गुनाह कबीरा था जो कि मैं कर रही थी, ठीक है। तो अब इस गुनाह कबीरा से कैसे तौबा करनी है? भाई आपको पहले तहारत का तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नमाज की शर्त जो है वो तहारत है, तहारत के बगैर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो तहारत हासिल करना आता है, कैसे तहारत हासिल करते हैं, ठीक है। जब औरत जो है वो हैज में होती है, निफास में होती है, या शौहर के साथ ताल्लुक होता है, तो उसके बाद तहारत कैसे हासिल की जाती है, हैज से कैसे निकला जाता है, नफास से जो है वो कैसे तहारत हासिल की जाती है, ठीक है। तो तहारत का इल्म हासिल करेगी तब उसके बाद नमाज पढ़ सकेगी ना। तो पहले तो तहारत का इल्म हासिल करना, और फिर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है भाई, नमाज कैसे पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज का क्या, यानी कितनी रिकतें होती हैं, तो इल्म हासिल करना, ठीक है। तो इल्म हासिल करना जो है ये तौबा के अंदर मदद देता है, तौबा के ऊपर कायम रहने में। वरना तौबा का सबसे पहला काम क्या होता है? अन्नदमु तौबतन, गुनाहों के ऊपर नादम और शर्मिंदा होना, कि हाँ मुझसे, मैं यकीनन अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ ये तो इल्म हासिल करके पता चलेगा। लेकिन इतना तो इंसान के जहन में हो ना कि मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही हूँ, तो मुझे उससे तौबा करनी है, मुझे उससे उसके ऊपर नादम और शर्मिंदा होना है। उसके बाद फिर वो आइंदा ना करने का दिल में इरादा कर ले कि नहीं, अब मैंने जानबूझ के नहीं करना, हो जाएगा वो और बात है, लेकिन मैंने जानबूझ करके गुनाह नहीं करना है। तो इरादा कर लिया दिल के अंदर के अब मैंने गुनाह नहीं करना है। तीसरी चीज ये है कि इल्म हासिल करना शुरू करे, ताकि उसको वाकई इस तौबा के ऊपर कायम रहना भी मुमकिन हो सके। बहरहाल, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू के अंदर लिखा था कि तौबा ऐसी चीज है कि इससे सब गुनाह माफ हो जाते हैं। जो शख्स भी अपनी हालत में गौर करेगा उसे महसूस होगा कि हर वक्त कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है, इसलिए हर शख्स को तौबा का एहतमाम करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि कुरान और हदीस में गुनाहों पर जो वईदें आई हैं उनको याद करे और अंजाम को सोचे, इससे गुनाह होने पर दिल दुखेगा। इस वक्त चाहिए कि जुबान से भी तौबा करे, और जो नमाज रोजा वगैरह फौत हुए हों उनकी कजा करे। अगर बंदों के हकूक जाया हुए हैं तो उनसे तो मुआफ करवा ले या अदा कर दे, और उनके अलावा गुनाह हुए हों तो उन पर खूब कुढ़े और रोने की शक्ल बनाकर अल्लाह ताला से खूब माफी मांगे। किसी को कोई सवाल हो तो आप जरूर से पूछ लें, वरना हमने एक तरह से अभी रिवीजन करी है पिछली पिछली बात की। और आगे बढ़ने से पहले ये आज खुद जो है वो आपसे एक सवाल करना चाहेगा कि हमने पिछली एक क्लास थी जो कि मर्दों में हुई थी, ठीक है, क्योंकि हम मर्दों की क्लास में ख्वातीन को भी इनवाइट करते हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ ख्वातीन जो हैं उन्होंने वो मर्दों वाली क्लास भी अटेंड करी हो। उसके अंदर जो है ना वो तौबा से मुतालिक एक बात हुई थी, तौबा से मुतालिक एक 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 बात हुई थी, वो अगर किसी को याद हो, तौबा की तौफीक से मुतालिक क्या बात हुई थी? तौबा की तौफीक किसको नहीं मिलती? चलिए इतना भी बता दिया, तौबा की तौफीक किसको नहीं मिलती, यानी कौन तौबा नहीं करता, कौन शख्स तौबा नहीं करता? तो कोई आप में से अगर उसका जवाब दे सके, बेदती तौबा नहीं करता, ठीक है, ये एक जवाब है आपका, ये पूरा जवाब नहीं है लेकिन जवाब का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही फरमाया, बिदत ही तौबा नहीं करता। क्यों नहीं तौबा करता? इसलिए कि बिदत जो है वो दीन के अंदर नई चीज के इजाफे को कहते हैं, ठीक है, दीन में नई चीज के इजाफे को। तो वो जो दीन में नया चीज उसने इजाद करी हुई है ना, या वो खुद इसने इजाद करी है, या किसी और की इजाद की हुई चीज के ऊपर वो अमल कर रहा है, यानी बिदत कर रहा है, बिदत पे अमल कर रहा है, तो उसको तो वो दीन में नेकी समझ के कर रहा है, वो तो नेकी समझ के कर रहा है, तो नेकी के ऊपर को थोड़ी तौबा की जाती है, ठीक है, वो तो गुनाह पे तौबा की जाती है ना। जब तक वो बिदअत को गुनाह मानेगा नहीं उस वक्त तक वो उससे तौबा नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिदअत ही जो है ना उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। दूसरा जवाब जो यहाँ पे लिखा है किसी ने, वो है खुद पसंद इंसान। खुद पसंद इंसान को भी तौबा की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि वो भी अपने जोन में गुनाह नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, वो भी गुनाह नहीं कर रहा होता, वो समझ मतलब वो कर तो रहा होता है, लेकिन वो अपने जोन में समझ रहा होता है कि नहीं वो कोई गुनाह नहीं करता, वो तो बड़ा मासूम है, जैसे नबी मासूम होते हैं ना, तो वो अपने आप को मासूम समझता है। ठीक है, तो वो भी तौबा नहीं करता, खुद पसंद इंसान, वो जुर्म में शिकार जो होता है। अच्छा, और क्या लिखा, जिसको ऐसा लग रहा हो कि उसने गुनाह किया ही ना हो। हाँ, यानी उसको है ही नहीं इस बात का एहसास कि उसने गुनाह किया है। ठीक है, ये भी आपका एक सादा सा आसान सा सही जवाब है, ये भी, जो गलत को गलत नहीं समझता। हाँ, जिसका इल्म गलत हो, जिसका इल्म गलत हो कि वो गलत को गलत नहीं समझता, कि वो गलत को सही समझता है जिसका इल्म गलत हो। ठीक है, तो इल्म गलत जिसका होता है, तो उसके लिए एक लफ्ज पिछली क्लास के अंदर जो इस्तेमाल किया था ना, वो था मुलहिद। मुलहिद, ठीक है, मुलहिद का मुलहिद के दो दर्जे होते हैं। एक दर्जा तो ये होता है कि वो ईमान से खारिज हो जाता है। ठीक है, वो जिंदीक होता है, वो तो ईमान से खारिज हो जाता है। ऐसा मुलहिद, इसकी मिसाल कादियानी। ठीक है, कादियानी जिसने खत्म नबूवत का इनकार किया, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो है ना वो एक नबी मान लिया। ठीक है ना, कि हाँ भाई ये इस दौर के नबी है, नाउज बिल्ला। ठीक है, ये भी इस दौर का नबी है। किसी ने कहा, उनमें से कादियानियों में से किसी ने कहा कि ये नया नबी नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो बस भेस बदल कर एक नए भेस में आ गए। ठीक है, तो जिस तरह से भी उसने कहा, लेकिन उसने खत्म नबूवत के बुनियादी अकीदे का इनकार कर दिया, ऐसा मुलहिद काफिर है। ठीक है, लेकिन इल्हाद का एक कमतर दर्जा क्या है कि वो गुनाहों की ना कुछ तारीफ के अंदर कुछ गड़बड़ कर जाता है, वो गुनाह को जो है वो गुनाह समझना छोड़ देता है, या इस किस्म की किसी चीज में मुबतला हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि उसकी 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 इसका इल्म बदल गया ना, तो उसका इल्म खराब हो गया, तो अब वो भी जो है वो गुनाह को नेकी समझ करके कर रहा है, तो वो भी क्यों तौबा करेगा, क्योंकि तो गुनाह को नेकी समझ करके कर रहा है। ठीक है, सुस्ती और कल तौबा करूंगा, ऐसा शख्स भी तौबा से महरूम रहता है कि जो कि कल पर तौबा को कल के ऊपर टालता रहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं बाद में करूंगा। ठीक है, तो इन चीजों से जो है ना वो सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है, खुसूसन इस दौर के अंदर जो फितना है, दज्जाल का दौर है। इस दज्जाल के फितने के अंदर इंसानों को इस गलत फहमी में मुबतला किया जा रहा है कि वो गुनाह कर तो रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि नहीं ये गुनाह है ही नहीं, ये तो नेकी का काम है जो कि तुम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा फर्ज किया। ठीक है, पर्दा जो है वो फर्ज है, गैर महरमों के साथ इख्तिलात जो है ये हराम है औरत के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो नेकी के कामों के को इस तरीके से करवाया जा रहा है, नेकी के काम यानी गरीबों की मदद करना, ठीक है ना, लाचारों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, और उसके लिए जो है ना वो बेपर्दा लड़कियों को बाकायदा कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर असाइनमेंट दिए जाते हैं कि तुम जा करके जो है ना वो कच्ची बस्तियों के अंदर जा करके गरीबों की मदद करो, जाओ घरों में जाओ, उनके इंटरव्यू करो, उनसे पूछो कि उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या हम कैसे मदद कर सकते हैं, और फिर उनको जो है ना यानी उनकी मदद करो, उनके लिए बाकायदा प्रोजेक्ट बनाओ, उनके लिए प्लान बनाओ, और ताकि जो है ना वो गरीबों की मदद हो। तो अब गरीबों की मदद करना ये तो दीन का काम, ये तो दीन में नेकी है, ये तो 100% नेकी है, लेकिन इस नेकी को करवाया कैसे जा रहा है, गुनाह करवा के नेकी करवाई जा रही है। यानी पर्दा जो है वो गुनाह का काम था, गुनाह के जरिए से नेकी करवाई जा रही है। ठीक है ना, तो हमारा दीन ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता कि आप गुनाह करके नेकी का काम करें, गुनाह के जरिए से आपने ये काम करें। ठीक है, तो ये चीज आज बहुत ज्यादा कॉमन है। उसी तरीके से टीवी के ऊपर और इस किस्म के हराम चीजों के जरिए से जो नेकी का काम लोग कर रहे होते हैं, जैसे भी गरीब मुसलमान, वो जो जो गजा के मुसलमान है, ठीक ठीक है, अब गजा के मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करना है, तो आवाज कैसे बुलंद कर रहे हैं, म्यूजिक के जरिए से आवाज बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, कि यानी ऐसे क्लिप्स बनाए, ऐसे वीडियोस बनाए जिनके अंदर जो है ना वो म्यूजिक है, जिसके अंदर नामहरम लड़कियां हैं, मतलब बेपर्दा लड़कियां हैं, बिल्कुल बेहिजाब और ये गरीब किस्म के कपड़े पहने हुए, है ना, वो फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, राइट। फलस्तीनियों के खिलाफ लोग कम हो गए, फलस्तीनियों के हक में लोग ज्यादा हो गए, लेकिन ये काम करा कैसे जा रहा है, ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के करा जा रहा है। इससे फायदा कोई भी नहीं हो रहा, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, लेकिन धोखा ये लगा हुआ है मुसलमानों को कि वो फलस्तीनियों की मदद कर रहे हैं, वो जो है वो काफिर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो नेकी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गुनाह को जो है ना वो मुजयन बना करके पेश करना, ये शैतान का काम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में शैतान का तस्करा करते हैं, वज़य्यना लहुम शैतान, कि गुनाह को जो है ना मुजयन करके कि भाई ये तो नेकी का काम कर रहे हो तुम, मीडिया पर आकर औरत का दरस कुरान करना, ठीक है। कितनी औरतें इस वक्त जो है वो दुनिया के अंदर वो यानी बड़ी मशहूर जो है वो दाइयां बन चुकी हैं, राइट, चेहरा भी खुला हुआ है किसी का, जो है वो बदन का दूसरा हिस्सा भी खुला हुआ है किसी को, यानी बाल का, बाल जो सतर है औरत का, बाल जो है ये तो सतर है, यानी फर्ज है जिसको छुपाना, सतर तो पर्दे से भी पहले सतर का फर्ज, ठीक है, लेकिन सतर तक खुला हुआ है और आकर के क्या कर रही है, दरस कुरान कर रही है मर्दों के सामने, पूरी दुनिया के मर्दों के सामने दरस कुरान कर रही है ना। तो दरस कुरान करना ये कोई गुनाह का काम है नहीं, ये तो नेकी का काम है, लेकिन इस नेकी के काम को कैसे कर रही है, गुनाह के जरिए से कर रही है, ठीक है ना। तो इस दरस कुरान से खालिसतन नुकसान हो रहा है, इस औरत को तो नुकसान हो रहा है, हो सकता है इस किसी सुनने वालों को फायदा हो भी जाए, उसके कान में पड़ गई कोई बात उससे जो है वो, ठीक है ना। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि गुनाह का काम, गुनाह के जरिए से जो नेकी का काम कर रहे हैं ना, अगर उससे किसी को फायदा पहुंच गया तो इसका मतलब है कि ये काम अच्छा था। ये एक बहुत बड़ा शैतान का धोखा है कि गुनाह के काम से किसी दूसरे को फायदा हो जाता है, तो इससे क्या नतीजा निकालते हैं कि इसका मतलब है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, ये भी तो लोगों को फायदा हुआ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है, ठीक है, कि किसी को फायदा हो गया ये इस बात की दलील हो कि ये काम ठीक था। जैसे कि मीडिया पे आकर के जो बेपर्दा औरत आकर के जो दरसो कुरान कर रही है, तो मुमकिन है कि इसके दरसो कुरान के अंदर कोई जुमला ऐसा था किसी के दिल पे असर कर गया, वो जो है वो नेक बन गया, उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, या हो सकता है कोई काफिर मुसलमान हो जाए इस औरत का दर्द सुन करके, मुमकिन है और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है कि काफिर मुसलमान हो जाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, ये वाकई ऐसा हो रहा है, आपने सुना भी होगा शायद कि ये जो फलस्तीन के जो वीडियोस बना बना करके पूरी दुनिया के अंदर बांट रहे हैं ना, पूरी दुनिया में जो है वो उसको वायरल किया हुआ है, फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये सवाल कोई उठाता है, ये सवाल किसी ने उठाया कि फलस्तीन की वीडियोज जो हैं वो पूरी दुनिया में वायरल कैसे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं वीडियोस वायरल, क्या इंटरनेट के बगैर ये वीडियोस बन सकती हैं, इंटरनेट के बगैर ये वीडियोस वायरल हो सकती हैं। तो जो दुश्मन है, जो काफिर है, जिसने के खाना भी बंद किया हुआ है, पीना भी बंद किया हुआ है, जिसने के हर चीज जो है वो उनके ऊपर बंद करी हुई है, उसने इंटरनेट क्यों नहीं बंद किया वहां का, कभी किसी ने सवाल किया, आपने कभी सवाल किया, कभी सोचा उसने इंटरनेट क्यों नहीं बंद किया वहां का। हमारे यहाँ तो 10 मुहर्रम का वक्त आता है ना पाकिस्तान के अंदर, तो डर के मारे इंटरनेट बंद कर देते हैं, ठीक है ना, कि कुछ हो जाएगा, कुछ फसाद हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इंटरनेट बंद कर दो भाई, इंटरनेट होगा ना तो उसके जरिए से धमाके कर देंगे, उसके जरिए से कुछ और चीज हो जाएगी। तो 10 मुहर्रम को भी इंटरनेट बंद होता है, 9 मुहर्रम को भी इंटरनेट बंद होता है, और फलस्तीन के अंदर सब कुछ बंद है, इंटरनेट बंद नहीं है, क्यों, वहां पर तो करेंसी भी उनकी चलती है, दुश्मन मुल्क की तो करेंसी जो है वहां पे गदा में चल रही होती है, यानी उनका कंप्लीट कंट्रोल है वहां पर, कंप्लीट कंट्रोल है उनका, लेकिन इंटरनेट खोल के रखा हुआ है, ठीक है। बहरहाल वो एक अलग सवाल है जो कि कोई कर नहीं रहा, ठीक है ना, और दूसरा ये है कि ये जो फलस्तीन के वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो अब उसमें आपने देखा होगा कोई फलस्तीन के, है ना, वो मर रहे होते हैं और आगे से वो कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे होते हैं, वो अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेस्टर्नर्स के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, राइट। अमेरिका, यूरोप में गैर मुस्लिम उसको देख रहे हैं तो वो कहें अच्छा इनके ऊपर इतनी मुसीबत आ रही है फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये फिर भी जो है वो अपनी दीन के ऊपर कायम है, तो इसका असर हो रहा है। और गैर मुस्लिम जो है ना वो, यानी या तो एक आध जो है वो मुसलमान भी शायद हो गए ये देख करके, ठीक है, या उनके ऊपर असर हो रहा है, हो सकता है आज नहीं तो कल वो मुसलमान हो जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो गुनाह का काम किया जा रहा है ये जायज हो गया, क्योंकि इसके असरात जो है वो इसके रिजल्ट्स अच्छे निकल रहे हैं? हरगिज नहीं, हरगिज ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा जरा ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि काम के लिए बुला रहे हैं वाले साहब। ये उसूल सबके जहन में क्लियर है, अगर कोई इश्काल है, कोई 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 एतराज है तो पूछ लें या हमारे सामने बयान कर दें कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो गुनाह के जरिए से हो सकता है किसी दूसरे को फायदा हो जाए, लेकिन गुनाह करने वाले को हरगिज हरगिज फायदा नहीं हो सकता, और उसका वो काम जस्टिफाई नहीं हो सकता, उसका काम जो है ना वो ये नहीं हो सकता कि नहीं बड़ा अच्छा काम किया इसका मतलब है इसने, ठीक है। तो रिजल्ट्स जो है ना ये डिफाइन नहीं करते कि काम जो है वो सही है कि गलत है, बल्कि शरीयत डिफाइन करती है, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसूल ये फैसला करते हैं कि ये काम सही है कि ये काम गलत है, नताइज फैसला नहीं करते, क्योंकि हमारे दीन के अंदर जो नतीजा है वो तो मरने के बाद पता चलेगा, वो तो आखिरत का नतीजा है, ठीक है ना, कि जहन्नम में गया कि जन्नत में गया, ठीक है। दुनिया के नतायज को थोड़ी फैसला करते हैं, किसी ने नेकी का काम किया और वो कामयाब नहीं हो सका, ठीक है ना, वो अब यानी जैसे दीन दीन को राइज करने के लिए बड़ी जद्दोजहदें करी लोगों ने, उलमाए कराम ने जद्दोजहद करी, ठीक है, हमारे उलमाए कराम ने बरसगीर के अंदर अंग्रेज के खिलाफ बाकायदा मुसल्ले जद्दोजहद करी, है ना, कितनी ये हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है वो तहरीक रेशमी रूमाल चलाई, उन्होंने जो है वो न जाने कितनी कितनी जो है वो कुर्बानियां बर्दाश्त करी ताकि अंग्रेज का जो है वो खत्म हो जाए ये दौर, ठीक है, गुलामी से मुसलमान निकल आए, क्या उन क्या नतीजा मुस्बत में निकला, क्या अंग्रेज जो है वो मुल्क छोड़ के भाग गए हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, क्या मुसलमान आजाद हो गए बरे सगीर के, नहीं, ये सारी जद्दोजहदें जो है वो नाकामी का शिकार हो गई, तहरीक रेशमी रुमाल भी नाकाम हो गई, ठीक है, और जो है वो शाम लीग में जो जिहाद किया और सब नाकाम हो गया, तो क्या ये उलमाए कराम इनका इन ये गलत काम कर रहे थे, क्या ये वाकई नाकाम थे, क्योंकि दुनिया में तो ये नाकाम हो गए, नहीं, ये हरगिज हरगिज नाकाम नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने जो ये जद्दोजहदे करी ये शरीयत के उसूलों के तहत करी, शरीयत के मुताबिक ये इन्होंने जद्दोजहद करी, ये आखरत में कामयाब हो गए, दुनिया में बेशक नाकाम हो लेकिन ये आखरत में कामयाब हो गए, किस बुनियाद पे कामयाब हुए, क्योंकि इनका तरीका शरीयत के मुताबिक था, ईमान और अमल साले के साथ था, ठीक है, उसी तरीके से जो भी शरीयत के मुताबिक काम करता है उसको दुनिया में उसकी मर्जी के मुताबिक नतायज मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ भी है कि कोई खिलाफ शरीयत काम करे, ठीक है ना, शरीयत को तोड़ करके गुनाहों के जरिए से कोई नेकी का काम करे और उसको बड़ी दुनिया के अंदर कामयाबी मिल जाए, उसको उसका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सीड हो जाए, उसको जो है वो यानी काफिरों को वो मार भी भगाए बेशक, राइट, वो जो है वो अपने मुल्क को अपने कौम को जो है वो आजादी भी दिला दे, क्या वो कामयाब हो गया? हरगिज हरगिज वो कामयाब नहीं हुआ, दुनिया में उसको कामयाबी मिल गई लेकिन ये कामयाबी नहीं है, ये असल कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो शरीयत पे अमल करने से मिलती है, और वो आखरत वाली कामयाबी होती है। ठीक है, यानी ये बज़ाहिर बड़ी बड़ी कॉमन सेंस की बात लगती है, बज़ाहिर बड़ी बुनियादी बात लगती है, लेकिन हम शदीद किस्म की गलत फहमी का शिकार है, गलत अंडरस्टैंडिंग का शिकार है इन मामलों के अंदर। ठीक है, और हम यकीन करके बैठे हुए हैं कि दुनिया की कामयाबी ही कामयाबी है, दुनिया की नाकामी ही नाकामी है। हम यकीन करके बैठे हुए हैं, और जो है ना वो साथ साथ हमने अपने आप को मुसलमान भी समझ रहे हैं, और अपने आप को जो है वो बड़ा दीनदार मुसलमान भी समझ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अगर मार्क्स ज्यादा आए हों तब भी पैसा दे के जॉब पाना, क्या ये रिश्वत की बुनियाद पे पैसा कमाना माना जाएगा? अगर मार्क्स ज्यादा आए हो तब भी पैसा दे के जॉब जॉब पाना, क्या ये रिश्वत की बुनियाद पे पैसा कमाना माना जाएगा? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भाई, अगर वो आप अल राशि वल मुर्तशी कल किला हुमा फिर नार की जो हदीस मुबारक है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, ठीक है, दोनों के दोनों जहन्नुम में हैं, तो अगर आप जो है वो नाजायज काम के लिए रिश्वत दे करके उसको जायज कर रहे हैं, उसको अपने लिए यानी कर रहे हैं, ठीक है, कोई नाजायज काम था, ठीक है, तो ये रिश्वत की डेफिनेशन के अंदर आता है, यानी आप इसके हकदार नहीं थे लेकिन आपने रिश्वत दे करके जो है वो अपने आप को उसका हकदार बना लिया। ठीक है, रिश्वत दे आप उसके हकदार नहीं थे, तो अगर आपने रिश्वत दे करके, जाहिर है फिर आप हकदार नहीं थे तो कोई दूसरा हकदार था, तो रिश्वत दे करके आपने क्या किया, दूसरे के हक के ऊपर डाका डाल दिया, दूसरे के हक को जो है वो आपने गसब कर लिया। भाई उसके पास पैसे नहीं थे, वो रिश्वत नहीं दे सकता था, आपके पास थे तो आपने अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया और उसके हक पे डाका डाल लिया। ठीक है ना, ये जहन्नुम वाला का काम है। ठीक है, किला हुमा फिर नार की वही फिर उसके ऊपर अप्लाई होगी। अच्छा, क्या लिखा है इन्होंने, फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम की वीडियो पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है? ठीक है, पहली बात तो ये कि कौन लगाएगा पाबंदी, इसका जवाब तो पहले आप देना, इन्होंने जब सवाल लिखा है, ठीक है ना, आप लोगों में से कोई जवाब दे या आप खुद ही जवाब दें कि फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम की वीडियो पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है। पहली बात तो ये है कि कौन लगाएगा इसके ऊपर पाबंदी, जी किस कौन लगाएगा, जी एग्जैक्टली, ठीक है ना, जो कर रहा है और जिसके कंट्रोल में वो पूरा का पूरा इलाका है उसी ने पाबंदी लगानी है ना, तो वो पाबंदी नहीं लगा रहा तो क्यों नहीं लगा रहा भाई, क्यों नहीं लगा रहा, यानी वो बुरा बुरा यानी अपनी बुराई जो है वो पूरी दुनिया में दिखा रहा है। ठीक है ना, तो लोग आम तौर पे क्या किया जाता है, उमूमी तौर पे क्या किया जाता है कि अपनी बुराई लोगों से छुपाई जाती है ना, ताकि आप बुरे ना बने, आप अच्छे बने। ठीक है, लेकिन आप तो नहीं छुपा रहे अपनी बुराई को, आप तो पूरी दुनिया में तस्वीर कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इंटरनेट बंद कर दें किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, बोस्निया के अंदर कितने मुसलमानों को मारा गया, अल्बेनिया के अंदर कितने मुसलमानों को मारा, कोसोवो के अंदर कितने मुसलमानों को मारा गया, और कितनी बुरी तरीके से मारा गया, रेप किया गया, गजा में तो रेप भी नहीं हो रहा है, कोसोवो बोस्निया के अंदर हजारों औरतों को रेप किया गया, और ये जो क्या नाम है रोहिंग्या बर्मा के अंदर, राइट, क्या क्या कुछ नहीं हुआ है वहां पर, क्या उसकी वीडियोज आती थी, क्या उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, क्या उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, ये बर्मा के जमाने में तो सोशल मीडिया भी मौजूद था, ठीक है ना, और पीछे जो है वो, लेकिन राइट, तो ये एक नफसियाती खेल है जो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है सही मानों में। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं और हैं इसके रीजंस, ठीक है ना, ये जानबूझ करके इस तरीके से किया जा रहा है, और हम जो है ना वो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हत्ता के शहादत भी जिसने दुनिया में शहीद कहलाने के लिए जिहाद किया, हाँ दुनिया में शहीद कहलाने के लिए जिसने जिहाद किया था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अगरचे के वो दीन के रास्ते में उसने जान दे रही लेकिन फिर भी वो नाकाम है, ठीक है, तो हमारा दीन तो ये वाली यहूदी खुद ही फैला रहे हैं, इनमें से अक्सर फेक भी होती हैं और जो सही भी होती हैं, तो मुसलमानों की बेबसी और जिल्लत का यकीन दिलाना मुसलमानों को, ठीक है ना। बहुत बड़ा गेम है ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। आपको जहनी तौर पर मफलूज कर देना, आपको जिल्लत और पस्ती के गहराइयों के अंदर उतार देना, ठीक है ना। आप देखो, मारते पहले भी थे, कोई नई पहली दफा तो नहीं मार रहे मुसलमानों को। इंडिया में गुजरात के अंदर इससे कई गुना ज्यादा मुसलमानों को मारा गया है, और कई कई गुना ज्यादा अजियतनाक तरीके से मारा गया है गुजरात के अंदर। 2002 की बात है ये, राइट। और कोसोवो, बोस्निया, बर्मा, और ये शाम के अंदर, अभी चंद दिनों पहले, ये शाम के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये आपको बता के मार रहे हैं, अब आपको दिखा के मार रहे हैं, देखो मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये तो एक बहुत, ये तो एक बिल्कुल ऊपर के लेवल की चीज है। इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ फायदे हासिल कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है ना, जिनका कि हम बयान भी नहीं कर सकते यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। तो हम बेवकूफ, हम कम अज कम इनके हाथों में जो हम जो बेवकूफ बने चले जा रहे हैं ना, कि हम जो वो चाह रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं हम वैसे ही जो है वो यानी एक्ट कर रहे हैं, ये कम से कम सोचें। और हम सोचें कि ये दज्जाल का दौर है, ये डिसेप्शन का दौर है, ये जो है ना, ये धोखे का दौर है। इसमें ऐसे नहीं होता जैसा कि आपको नजर आ रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर। अकलमंदी का कुछ कुछ तो हमें इजहार करना चाहिए। बहरहाल, तो तौबा के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, 5 मिनट आगे इस क्लास में। खौफ खुदा और उसका तरीका, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म फरमाया है कि मुझसे डरो। खौफ खुदा ऐसी चीज है कि आदमी उसकी बदौलत गुनाहों से बचता है। उसका तरीका वही है जो तौबा का तरीका है, कि अल्लाह ताला के अजाब को सोचा करे, जिससे अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है, ठीक है। अल्लाह ताला से डरो, ठीक है, यानी अल्लाह ताला से डरो का मतलब क्या होता है, कि अल्लाह ताला की नाराजगी से डरो, ठीक है। अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला तो, अल्लाह ताला की मगफिरत जो है वो उसकी उसके अजाब के ऊपर गालिब है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से डरने का मतलब उस तरह का डरना नहीं होता कि जैसे कि इंसान सांप से डरता है, जैसे कि इंसान जो है वो बिच्छू से डरता है, या शेर से डरता है, या जो है ना वो इंसान किसी और किस्म की अजियत से डरता है। बल्कि अल्लाह ताला से डरने की थोड़ी सी तफसील है, वो ये है कि जिस तरह से कि आप अपने जो सबसे महबूब शख्सियत जो है ना, उसकी नाराजगी से डरते हैं। आप इस बात को का तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो आपसे नाराज हो जाए, आप उसको जो है वो नाराज कर दें, ठीक है। तो अल्लाह ताला की नाराजगी से डरना, कि इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफून ला युहिब्बुल मुसरिफीन, ठीक है, कि भाई मैं इसराफ नहीं करूं। जैसे कि हमने मंडे वाली क्लास के अंदर जो टॉपिक चल रहा है सूरह बनी इसराइल की तफसीर के अंदर, देखिए वहां पर अल्लाह ताला ने इसराफ से मना किया, वला तुसरिफू, ठीक है, नहीं तुम इसराफ नहीं करो, तुम फजूल खर्ची ना करो। और सिर्फ उसके अंदर इतना बता दिया, देखो अल्लाह ताला फजूल खर्चों से ना मोहब्बत नहीं करता। ईमान वाले के लिए ये सोच कि क्या मैं अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा, राइट, ये सोच ही उसके लिए काफी है इस गुनाह से बचने के लिए, ठीक है। जिस तरह से कि अगर आप अपने वालिदैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उनको नाराज करने का आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। आमतौर पर घरों के अंदर ये वाली कैफियत होती है, ठीक है। तो बस यही है खौफ खुदा, ठीक है। तो इस जिसको ये खौफ खुदा मिल जाए तो फिर वो गुनाहों से बचता है, ठीक है। वरना गुनाहों का इल्म भी हासिल हो गया है ना, किताबें पढ़ ली, पता चल गया कि ये गुनाह होते हैं और यानी नहीं करने चाहिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, लेकिन परवाही कोई नहीं है, अल्लाह ताला की नाराजगी की कोई फिक्र ही कोई नहीं है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का कोई एहसास ही नहीं है अल्लाह ताला को नाराज करने का, ठीक है। तो आप जिसको कहते हैं ना, यानी बेधड़क गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे जब वालदैन से मोहब्बत है ही नहीं, या वालदैन से कोई की नाराजगी कोई का कोई खौफ ही नहीं है, तो अब वालदैन के सामने ऐसे काम करेंगे जो कि उनको पसंद नहीं है। अब वो बैठे कुढ़ रहे हैं या वो बैठे जो है वो नाराज हो रहे हैं, आपके माथे के ऊपर बल ही नहीं आ रहे। आप कर रहे हैं जो आपको करना है, मन मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को आप अल्लाह ताला के ऊपर पोर्ट कर दें कि भाई अल्लाह ताला नाराज हो, अल्लाह ताला खुश हो, मुझे क्या। ठीक है, मैनू की, पंजाबी में कहना मैनू की, मुझे क्या भाई। ठीक है, तो खौफ खुदा ये जो है ना वो गुनाहों से फिर बचने का सबब बन जाता है इंसान की जिंदगी में, और अगर ये ना हो तो फिर सारा इल्म भी उसको गुनाहों से नहीं रोकता। क्या हर किताबें पढ़ने वाला गुनाहों से चला होता है? ठीक है ना, नहीं। बड़ा इल्म हासिल है, बड़ा कुछ पता है, लेकिन इतना बड़ा इल्म हासिल होने के बावजूद फिर भी वो गुनाह कर रहा होता है, वो खौफ खुदा क्या ना होना, यही उसकी वजह बनती है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखना और उसका तरीका, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हक ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितना खोल खोल करके उम्मीदें दिलाई हैं कि ए मेरे बंदो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, बल्कि फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि आप कह दीजिए कि ए मेरे बंदों, वो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर हद से ज्यादा जुल्म किया, असरफू आला अनफुसहिम, असरफू का मतलब वही इसराफ करना, इसराफ किस चीज को कहते हैं, जितनी हद थी ना उससे ज्यादा बढ़ करके कोई काम करना। ठीक है ना, तो यहां पर गुनाह की बात हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने जानों के ऊपर इतना जुल्म किया, क्योंकि गुनाह क्या होता है, पीछे हम बात कर चुके हैं ना कि अपनी जान के ऊपर जुल्म होता है, क्योंकि जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको उसकी पिटाई होगी, उसको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पक्का ठक्का उसूल है, इसके अंदर एक्सेप्शंस नहीं, ये नहीं है, किसी ना किसी तरीके से उसको अजियत होगी। तो भाई अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहे हो, तो अल्लाह ताला उसको भी कहते हैं ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरुज़ुनूबा जमीआ, कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। ठीक है भाई, कैसे माफ कर देंगे, उसके लिए कुरान मजीद की दूसरी आयात और नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से पता चलता है कि तुम तौबा कर लो, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, हत्ता के शिर्क जैसा गुनाह, जिससे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसको, अच्छा ये बात फिर वही आ जाती है ना तफसीर। ठीक है, कि एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको मैं माफ नहीं करूंगा, शिर्क मैं बाकी गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब कोई शख्स जो है वो अरबी जुबान सीख ले और उसको पढ़े और अच्छा अल्लाह ताला ने कहा शिर्क को माफ नहीं करूंगा, ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि कोई माफी मांगेगा भी ना अगर शिर्क से, तौबा करेगा भी तो भी अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो नहीं माफ करूंगा, तुमने शिर्क किया क्यों, तुम्हें तो करना ही नहीं चाहिए था शिर्क। तो इस कुरान की आयत से तो ऐसा लगता है कि जो माफी मांगेगा उसको भी माफ नहीं करेंगे, है ना भाई, क्या ख्याल है? ऐसा क्या किसी के ध्यान में ये बात नहीं आ सकती, किसी को नहीं पता हो बाकी चीजें, ना पता हो कोई कॉन्वर्ट मुस्लिम है, कोई नया मुसलमान हुआ है और वो कुरान मजीद जो है वो तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दे या अरबी जुबान सीख करके कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे, तो इस आयत के ऊपर आकर के क्या उसके दिल में ये बात नहीं आ सकती, क्या शैतान उसके दिल में ये बात नहीं डाल सकता कि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो माफी मांगेगा वो भी उसको भी माफ नहीं करूंगा, हाँ बाकियों की माफी मांगूंगा तो मैं माफ कर दूंगा, शिर्क के ऊपर माफी मांगूंगी तो मैं माफ भी नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो फिर कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई इस बंदे को। बिल्कुल इसी तरीके से जहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, तो अब इस आयत के तर्जुमे को पढ़ करके भी तो ये जहन में आ सकता है ना कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी मांगने की है ना, अल्लाह ताला बगैर माफी मांगे ही माफ कर देंगे सारे गुनाहों को, क्योंकि देखो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, बगैर माफी मांगे माफ कर देंगे। बात समझ में आ रही है? एक आयत को पढ़ करके ये लगता है कि माफी मांगने पर भी माफ नहीं करेंगे शिर्क वाले गुनाह को, माफी मांगने पर भी माफ नहीं करेंगे, और दूसरी आयत को पढ़ करके लगता है कि कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बगैर माफी मांगे सब कुछ माफ कर देंगे। ला तसरफू, क्या है वो, लदीना असरफू अला अनफुसिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, वो तो है ही माफ करने वाला, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। तो क्या क्या मजे हैं माशाल्लाह है, जो मर्जी आए समझो, जो मर्जी आए जो है ना उसको, उसके ऊपर तकिया करके बैठ जाओ। यानी वो बंदा फिर मायूस होकर के इस्लाम ही छोड़ देगा जिसने के उस आयत को पढ़ा कि मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, शिर्क को माफ नहीं करूंगा। भाई फिर मैं जो अपने शिर्क से तौबा करके या मैं शिर्क से माफी मांग करके इस्लाम में आया, तो यहाँ पे तो कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं माफ करूंगा, तो क्या फायदा फिर मुझे नमाजें पढ़ने का, क्या फायदा मुझे बाकी चीजों को छोड़ने का, चलो जी मैं वापस अपने दीन में चला जाता हूँ। और दूसरी तरफ जो है वो फलाने लाट साहब हमारे जैसे मुसलमान है ना, कोई माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला वैसे ही माफ कर देंगे, जैसे कि आजकल यही बात फैली हुई है, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, किसी चीज पे तौबा करने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला है ना रहीम है करीम है, सब कुछ माफ कर देंगे। कहने का मकसद ये है, ये सारी बातें, कि ये अपनी अकल शरीफ की बुनियाद पर जो है ना कुरान मजीद को भी समझोगे ना, तो भी एक्सट्रीम गुमराही का शिकार हो जाओगे, ठीक है ना। कुरान मजीद को अपनी अकल शरीफ की बुनियाद पर नहीं समझना है, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तशरीह के मुताबिक समझना है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने या तो बराह रास्त बता दी जिसको हदीस मुबारक कहते हैं, या अपने सहाबा को समझा दी, और सहाबा को समझाया मतलब, ठीक है ना। इस जरिए से कुरान तब सही बात समझ में आएगी, वरना तो या तो मायूसी की एक्सट्रीम में चले जाओगे या जो है ना वो खुशफहमी की एक्सट्रीम में चले जाओगे। इन दो आयात को ही सामने रख लो, बात साफ हो जाती है, ठीक है। तो आप इस छोटे से इल्म को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को समझा सकती हैं, बहुत सारे लोगों को अपने घराने में अपने दोस्त अहबाब में बता सकती हैं कि भाई हमें इल्म जो है ना वो अहले हक उलमाए कराम से हासिल करना है, और सहाबे कराम के तरीके के मुताबिक जो अहले हक काम कर रहे हैं उनके उनसे इल्म हासिल करना है, ठीक है। वरना आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो नाम तो अहले हक का लगा हुआ है लेकिन वो सहाबा कराम के तरीके पे काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो आजकल जो है ना वो मॉडर्न इस्लाम के तरीके पे बहुत सारे सो कॉल्ड अहले हक जो है वो काम करना शुरू हो गए, तो वो सही तरीका नहीं होता, सही तरीका सिर्फ और सिर्फ सहाबा का तरीका है। बहरहाल अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई है बे इंतहा कि भाई माफी मांगोगे तो माफ कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम माफी मांग रहे हो मैं कह दूंगा कि नहीं मैं नहीं करता माफ, जाओ किसी और से जाके माफी मांगो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद ऐसी चीज है कि जिससे नेक काम करने और तौबा करने की हिम्मत बढ़ती है, इसका तरीका यह है कि अल्लाह ताला की रहमत को याद करे और सोचा करे, ठीक है, याद करे और सोचा करे। भाई इल्म हासिल करेगा जो चीज पता होगी उसी को याद करेगा ना, जो चीज पता ही नहीं उसको आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो इल्म हासिल करे और फिर उस इल्म को याद करता रहे, यानी रिमाइंड कराता रहे अपने आप को, और उसके बारे में जरा यानी फिक्र करे सोचे, ठीक है, उसके बारे में जरा और गौर करे, ठीक है। कोई सवाल वगैरह है तो आप यहाँ पे पूछ लीजिएगा, वरना हम इस क्लास को भी खत्म करते हैं, दूसरी क्लास जो है वो थोड़ी सी ब्रेक के साथ फिर मिसाली सात की क्लास शुरू करेंगे जो।